नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क का विस्तार अतिरिक्त 235 शहरों तक करके इस मामले में रिलायंस जियो को पीछे छोड़ दिया। अब भारती एयरटेल की ओर से कुल 500 शहर में 5G सेवा की पेशकश की जा रही है, जबकि रिलायंस जियो 406 शहरों में ये सुविधा दे रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा, भारती एयरटेल की तीव्र गति की 5G सेवा देश के 500 शहरों के ग्राहकों को उपलब्ध है। एयरटेल ने अपने नेटवर्क में और 235 शहरों को जोड़ा है। इसमें कहा गया कि कंपनी प्रतिदिन अपने 5G नेटवर्क पर 30 से 40 शहरों को जोड़ रही है। भारती एयरटेल में मुख्य तकनीकी अधिकारी रणदीप सेखो ने कहा, 5G सेवाओं की पेशकश करने वाली पहली कंपनी एयरटेल थी। इस सेवा को अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। सितंबर 2023 तक हमारे 5G नेटवर्क का विस्तार पूरे शहरी भारत तक हो जाएगा। सरकार ने 31 मार्च तक 200 शहरों तक 5G सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि ये सेवा अब तक देश के 900 से अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। वैश्विक कॉफी कंपनी स्टारबक्स के भारतीय मूल के नए CEO लक्ष्मण नरसिम्हन ने कहा कि वह कंपनी को संस्कृति, ग्राहकों, चुनौतियों और अवसरों को समझाने के लिए महीने में एक बार रेस्टोरेंट में बरिस्ता यानी बतौर कर्मचारी काम करेंगे। कॉफी बार में काम करने वाले व्यक्ति को बरिस्ता कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर 55 वर्षीय नरसिम्हन ने बीते सोमवार को सिएटल स्थित कंपनी के CEO का पदभार संभाला। उन्होंने लगभग 2 सप्ताह पहले कंपनी के संस्थापक और पूर्व CEO हार्वर्ड शुल्ट्ज से बागडोर संभाली। लक्ष्मण ने बृहस्पतिवार को कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि वह हमेशा कंपनी के भागीदारों और इसकी संस्कृति के लिए समर्थक रहेंगे। पत्र में आगे लिखा गया कि आपके साथ मैंने ये जानने के लिए व्यवसाय के हर पहलू का अनुभव किया है कि हरे रंग का एप्रन पहनने का वास्तव में क्या मतलब है। आपने हमारे स्टोर में मेरा स्वागत किया, मुझे बरिस्ता बनने का प्रशिक्षण दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया अपने नेक्सा खुदरा आउटलेट के जरिए पेश महंगे वाहनों की बिक्री अगले वर्ष तक हुंडई और टाटा मोटर्स के महंगे वाहनों की कुल बिक्री से अधिक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कहा, मारुति सुजुकी के महंगे वाहनों की बिक्री के लिए नेक्सा की खुदरा श्रृंखला 2015 में शुरू हुई थी। अब इसकी कुल बिक्री 20 लाख इकाई के पार चली गई। मौजूदा समय में इसके तहत बलेनो, इग्निस, सियाज, XL6 और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों की बिक्री होती है। आगामी SUV और जिमनी की पेशकश भी इस श्रृंखला के तहत की जाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि 2023-24 में उसके यात्री वाहनों की बिक्री 5 से 7.5% तक बढ़ेगी। श्रीवास्तव ने कहा, नेक्सा में हमने 20 लाख इकाई का आंकड़ा पार कर लिया। पहली 10 लाख गाड़ियां 4 वर्षों में और अगली 10 लाख 3 वर्षों में बिकी। श्रीवास्तव ने कहा, नेक्सा का उद्योग में 4th स्थान है। हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष तक ये वाहन उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्त वर्ष में नेक्सा की 3.7 लाख इकाइयां बिक सकती हैं, जबकि पिछले वर्ष की बिक्री का आंकड़ा 2.55 लाख इकाई है। ऐसे ऋण म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35% से कम निवेश करते हैं, उन्हें लंबी अवधि के कर लाभ से वंचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार वित्त विधेयक में इस प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार संसद में वित्त विधेयक 2023 में एक संशोधन के रूप में इस तरह का प्रस्ताव दे सकती है। वित्त विधेयक 2023 में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए कर प्रस्ताव है। इसे मंजूरी के लिए शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। संशोधनों को संसद की मंजूरी मिलने पर ऐसे म्यूचुअल फंड योजनाओं के धारक जो अपनी संपत्तियों का 35% इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं, उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक कर लगेगा। इन संशोधनों में वित्त मंत्रालय इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को अब तक मिलने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को हटाने का प्रस्ताव कर सकता है। लोकसभा ने शुक्रवार को वित्त विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही GST के अंतर्गत विवादों के निपटान को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से मौजूदा समय में करदाता उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर करते हैं। वित्त विधेयक 2023 में जिन संशोधनों को मंजूरी मिली, उनके मुताबिक GST अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी। हालांकि प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। GST को लागू हुए 5 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन इसका अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से GST के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं। नांगिया एंडरसन इंडिया के निदेशक तनुषी रॉय ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों पर भार कम होगा और करदाताओं को भी राहत मिलेगी। रॉय ने कहा, ये निश्चित ही सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। उद्योग का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार भी अब खत्म हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में हाल में खोजे गए लिथियम भंडार का उपयोग करता है तो वह दुनिया में वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में पहले पायदान पर होगा। गडकरी ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ के शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसे इलेक्ट्रिक बसें ही भविष्य हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।